झांसी मालवाणी से मैं दीपक नामदेव। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं एक किसान परिवार के किसान से मिला हूँ जो कि घरौठा क्षेत्र के सिमरदा गांव से हैं, और मैं इनसे बात करता हूँ किसानी की कि अभी किस कौन कौन सी फसल बोई गई है और बारिश का आपके यहाँ पे क्या असर पड़ा है, और खेती अभी आप आधुनिक मतलब खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं सीधे। जी सुशेंद जी, आपका झांसी मालवाणी में स्वागत है। जी
नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप दीपक आपने हमारे पास आके हैं, अपना समय व्यतीत करो है, सो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ तो हम बतावे जा रहे हैं आपको कि खेती खेती तो हम करते हैं करत तो, लेकिन जा साल तो बहुत ही ज़्यादा पानी जो बरसो है जो को बहुत ही खराब प्रभाव पड़ो, और बरसो है अच्छा प्रभाव तो पड़ सकत तो, लेकिन इतने लेट बरसो कि उनको कोनो प्रभाव ही नहीं पड़ो। कैसे हैं? हम बता रहे हैं आपको क्या ऐसा रहो कि एक तो अभी बरसो सो आदमियों को इतनी समस्याएं भाई, क्या समस्या है भाई कि उन्हें पलेवा करने और जिसे बोलते हैं ढहना, जैसे कि कहूँ ट्यूबवेल से पानी दो, कहूँ को उन्हें कोनो तालाब से दो तो डबल तो खर्चा पड़ेगा उनको, दोनों दोनों के डीजल दो उनके कुआ से दो, सुबह को घंटा दो तो उनने पहले पलेवा करो, फिर बखराई बोनी जो तो कराओ सो कराओ। इसके साथ साथ जो मूंगफली में है तो किसान सो उनने पहले तो उखाड़े को पानी दो और फिर उनने जो पलेवा को पानी दो, ठीक है।
सुशेंद्र जी, अभी आपके यहाँ पे कितनी बुआई हो चुकी है और कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं, कितने एकड़ में आपने फसल लगाई है?
तो अभी हमारे क्षेत्र में लगभग लगभग 60 से 70% यानी कि 60-70% बुवाई हो गई है, जो कि चना मसूर सरसों मटर आदि चीजें बो रही जिन्हें बोलते हैं रबी की फसल है, ठीक है। अब जो रह गई 30 से 35% बार रह गई हो जो पिसिया गेहूं की, जो कि पलेवा जो लेट ही हो रहा हो, जो लेट ही होगा और जो पानी बरस गया उसको जा से और लेट कैसी हो गई कि पलेवा करो जो पानी बरस गया सो जो और बखन्नी नहीं आ पा रही।
तो सुशेंद्र जी, बखन्नी आप ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं या बैलगाड़ी से करते हैं?
पहले तो हमारे इतने होती बैला गाड़ी से कि दो से तीन हमारे जोड़ी बैला ही हती सोने से करते, लेकिन अब बात है का है कि अब आज को समय बदल गयो कि अब जल्दी से जल्दी कर वो चाह रहे तो आप हम ट्रैक्टर भी ले आए, अपना ट्रैक्टर भी है तो ट्रैक्टर से खेती करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर से करन तो जरूर लगे लेकिन जो बैला गाड़ी से खेती होती और जो उससे अन्न उगत्तू हमारे ना तो बस ना तो कोनो बीमारी होती ना कुछ, क्योंकि मानो जात पुरानी कहानियों में सुना है, बुजुर्ग लोगों से मैंने जाना है तो वो कहन लगत गे कि बैल के खुर में अमृत पाओ जात वो इनमें नहीं है, इसीलिए इतनी बीमारियां घेर लेंगे। इस बीमारियों का एक कारण नहीं है, कई कारण हैं कि पहले आप जो बैल गाय भैंस का गोबर हो तो जाको खाद डालते, अब का है अच्छी पैदावार की अधिक से अधिक नाज उगाने तो ले यूरिया क्यों ज्या दवाई क्यों वा दवाई, दुनिया मुल्क की दवाई मिला मिला किंच रहे और पैदावार तो बढ़ा रहे और अपने स्वास्थ्य को इतनो खराब बना लो कि तनक तनक में बीमार हो जा रहे हो, जितनो कमानी है जितनो गमा दे रहे स्वस्थ को बनावे में।
तो सुशेंद्र जी, आपने अभी ऑर्गेनिक खेती या देसी खाद कितने एकड़ में डाला है? आपने ऑर्गेनिक खेती के क्या रुझान है आपका?
अब तो ऐसे अब हमने भी कई जगह ऑर्गेनिक खेती करी, जगह सीखवे भी गए हम तो भाई हमने भी करी ऑर्गेनिक खेती सोची सो हमने 2 से 3 एकड़ के लगभग नफी नहीं क्लियर, 2 से तो अधिक ही है लेकिन 3 से कमाई मान लो वही 7-8 बीघा के लगभग हो, यानी कि 2-2.5 एकड़ है उसमें हमने देसी गाय और भैंस को गोबर हमारा हो जानवर हमारे पले हैं इतने सो उनके गोबर से डाले, वो मैंने ऑर्गेनिक खेती भी करी थी, उससे अपने परिवार को हम खर्च चला पा रहे, किस प्रकार चला रहे कि वो अपने हम खावे को रख रहे केवल कि अपना परिवार स्वस्थ तो कर ले पहले हम, इसके बाद हम बड़ा उज्जैन धीरे धीरे वो भी बेचे हैं, लेकिन बाजार में इसका प्रभाव इस प्रकार भी दिखाई दे रहा है कि जो ऑर्गेनिक खेती से जो गेहूं हम उगा रहे बाको कीमत अधिक मिल रही इन खेतियों से इन दवाजन वाली पैदावार से, इसलिए आपको हम सही सलाह दें तो हमें कई जगह से भी इसके रुझान भी मिले हैं और हमें जानकारी मिली है और सहायता भी मिल रही है कि ऑर्गेनिक खेती करो, कोई समस्या है तो हमें बताओ उसकी हम सूचना भी दें, कोई कीड़ा लगा तो बाकी भी जानकारी सही रूप से मिल रही है, तो आप लोग से भी हम निवेदन।